नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही विशिष्ट एक खास साहित्य श्रृंखला पर बात करने जा रहे हैं
जी,
जिसे उसके प्रणेता ने खुद अपने पूरे लेखन का मक्खन कहा।
हाँ, मक्खन ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया।
हम बात कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की।
जी हाँ,
उन्होंने 1988 से 1990 के बीच ये क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला रची थी।
बिल्कुल।
और हमारी ये जो चर्चा है ये उन्हीं के कथनों पर आधारित है। पूज्य गुरुदेव ने खुद इसकी महत्ता बताई है।
जी जी।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया, इसका उद्देश्य क्या था।
सही बात है, ये जानना बहुत जरूरी है।
तो पहली बात जो आपने कही मक्खन, ये तो है ही, पर उन्होंने एक और बात कही जो मुझे बहुत चौंकाती है।
कौन सी?
उन्होंने कहा कि अगर उनके जीवन भर के सारे साहित्य को तराजू के एक पर्दे पर रखें और सिर्फ इस क्रांतिधर्मी साहित्य को दूसरे पर।
हाँ, युग गीता है ये, इस युग के लोगों का मोह भंग करेगी
जी,
उन्हें सही दिशा दिखाएगी।
उन्होंने
ये भी साफ कहा कि भाई मिशन को अगर समझना है या समझाना है
हाँ,
तो ये साहित्य पढ़ना ही पड़ेगा, अनिवार्य है।
इसमें एक चीज पर बहुत जोर है, विचार, विचारों की शक्ति।
हाँ, बहुत ज्यादा।
वो कहते हैं हमारे विचार पैने हैं, तीखे हैं, और फिर कहते हैं कि दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं वो सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं।
जी।
विचारों में इतनी शक्ति, ये कैसे, मतलब इसका क्या अर्थ था उनके लिए?
देखिए, पूज्य गुरुदेव का ये दृढ़ विश्वास था कि असली क्रांति विचारों से ही आती है। उन्होंने विचारों को क्रांति के बीज कहा। बीज जैसे होते हैं ना, छोटे से, पर उनमें क्षमता होती है।
हाँ, सही बात है।
तो ये विचार फैलेंगे तो समाज में, दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन, एक धमाका संभव है, ऐसा वो मानते थे।
अच्छा,
इसीलिए तो उन्होंने कहा कि इसे बार बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो और 100 लोगों को पढ़ाओ।
100 बार और 100 लोगों को?
जी। ये सिर्फ कागज पर शब्द नहीं थे उनके लिए, ये उनका उनका ज्ञान शरीर था।
ज्ञान शरीर, ये क्या मतलब हुआ?
मतलब उनके विचार, उनका ज्ञान, जो उनके भौतिक शरीर के न रहने पर भी जिंदा रहेगा, मार्गदर्शन देगा।
अच्छा।
उन्होंने बंदनिया माताजी से वसंत पंचमी 1990 को कहा भी था, ये साफ साफ कहा था।
हाँ, वो उद्धरण महत्वपूर्ण है। क्या कहा था उन्होंने?
उन्होंने कहा, मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा। आप सबसे कहिएगा, सब बच्चों से कहिएगा कि मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।
तो ये एक तरह से उनकी अंतिम इच्छा या निर्देश जैसा था।
बिल्कुल, अपने विचारों को जीवित रखने का, फैलाने का निर्देश।
एक और बात थोड़ी हैरान करती है। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए उनके ही लिखे बड़े ग्रंथ, जैसे गायत्री महाविज्ञान है, प्रज्ञा पुराण है,
जी जी, विशाल ग्रंथ है वो,
उनको भी एक तरफ रखकर पहले इन्हें पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, ये प्राथमिकता दर्शाती है, शायद उस समय की जो जरूरतें थीं, जो तात्कालिक आवश्यकता थी।
अच्छा।
और भविष्य के लिए, खासकर 21वीं सदी के लिए, इन विचारों की जो प्रासंगिकता उन्होंने देखी वो शायद अद्वितीय थी। उन्होंने इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए, अपने उत्तराधिकारियों के लिए वसीयत जैसा बताया।
वसीयत।
हाँ, और जीवन और चिंतन को बदलने के सूत्र, मतलब प्रैक्टिकल गाइडेंस।
और वो जो उन्होंने कहा कि महाकाल ने स्वयं मेरी उंगलियां पकड़कर ये साहित्य लिखवाया है।
जी, ये बात इसके पीछे की प्रेरणा को दिव्य बनाती है। महाकाल यानी समय की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति।
तो ये कोई सामान्य लेखन नहीं था।
बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि इसे लागत मूल्य पर छापो, फैलाओ, कोई कॉपीराइट नहीं।
हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है,
ताकि ये विचार, ये ज्ञान बिना किसी रुकावट के सब तक पहुंचे।
इस श्रृंखला में पुस्तकें भी काफी विविध विषयों पर हैं। मैंने देखा लगभग 22 पुस्तकें हैं।
हाँ, काफी हैं।
जैसे 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य है, फिर समस्याएं आज की, समाधान कल के, नारी जागृति अभियान
जी,
शिक्षा ही नहीं विद्या भी।
हाँ, और नवयुग का मत्स्यावतार, विषयों की रेंज देखिए, भविष्य, समाज, नारी, शिक्षा, अध्यात्म,
सब कुछ है इसने, जीवन का हर पहलू।
तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने क्रांतिधर्मी साहित्य को अपने जीवन भर के चिंतन का निचोड़ माना।
बिल्कुल, सार, एसेंस,
युग परिवर्तन का एक बहुत जरूरी साधन समझा।
हाँ, मुख्य साधन।
और अपने सूक्ष्म ज्ञान शरीर का प्रतिनिधि माना, जिसे वो चाहते थे कि जन जन तक पहुंचे, यही उनका अंतिम संदेश था। एकदम सही। और ये बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना।
क्या सवाल?
कि जब कोई इतना बड़ा दृष्टा अपने विचारों की एक खास श्रृंखला को भविष्य बनाने के लिए इतना निर्णायक, इतना मौलिक मानता है, तो फिर उन विचारों से जुड़ने वालों के लिए, उन्हें पढ़ने वालों के लिए इसमें कैसी प्रेरणा या कैसी जिम्मेदारी छिपी हो सकती है?
हाँ, ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा प्रश्न है।
बिल्कुल, इस पर मनन करना चाहिए।